Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
लेकिन एक दांत में थोड़ा सा दर्द हो जाए या अन्न का कण अटक जाए तो वो दांत आपको बार बार मालूम होना शुरू हो जाए, आपका ध्यान बार बार वहीं जाएगा, बार बार वहीं जाएगा, बार बार परेशान हो जाएंगे आप समझ लेते हैं हाँ ये दांत खराब है। आपके शरीर के अंदर के बहुत सारी चीजें, उपकरण, अंग मालूम नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन बीमार हो जाए तो आपका बार बार हाथ जाएगा पेट की तरफ, ओहो कुछ गड़बड़ी हो गई। आपके हाथ पैर सब कुछ है लेकिन आपको मालूम नहीं है, मालूम नहीं पड़ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो सारी चीजें क्या है। आपके पास पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं, पांच कर्मेन्द्रियां हैं, आपको मालूम नहीं पड़ रही, कोई भी इंद्रिय आपको मालूम पड़ रही है तो समझ लीजिए कि वो इंद्रिय बीमार है, अस्वस्थ है। मालूम होना ही बीमारी है, होते हुए भी मालूम ना हो वही उसकी स्वस्थता है। इसलिए ये कामना जो है वो हमारे इंद्रियों को जगा देती है, और जब इंद्रियों को जगा देती है तो इंद्रियां अपना अस्तित्व प्रकट कर देती हैं, अपने होने का भाव जगा देती हैं, फिर मालूम होने लगता है वो इंद्रियां हैं हमारे पास। इसलिए कहा तम अक्रतुः पश्यति धातु प्रसादान, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जब हम निर्वसन हो जाते हैं तो हमारी इंद्रियां शांत हो जाती हैं, और जब इंद्रियां शांत हो जाती हैं ना तो फिर हमारे मन में बहिर्मुखता नहीं रहती, फिर अंतर्मुख मन हो जाता है। बाहर की वस्तु बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। महर्षि रमन ने एक जगह पर बोला कि जब हम बाहर की वस्तु को देखते हैं तो हम अपने आप को भूल जाते हैं। बहुत अच्छी बात बोली, हमारी वृत्ति जब बाहर जाती है तो हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम अपने होने का भाव खो देते हैं, और ये बाहर की विषय होना, विषयों का होना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी को तो बहिर्मुखता बोलते हैं, कामना इंद्रियों को जगाती है, और जैसे इंद्रियां जगती हैं वो इंद्रियां बहिर्मुख होने लगती हैं, और इंद्रियां बहिर्मुख होने के बाद हमें विषय मालूम होते हैं। ये विषय हमारे मन में संवेदना और संस्कार निर्मित कर लेते हैं, ये संस्कार बना लेते हैं, इंद्रियां अनुभव पैदा करते हैं, अनुभव के बाद संस्कार बनते हैं, संस्कार के बाद स्मृतियां पैदा हो जाती हैं, और वो स्मृतियां पुनः हमें अनुभव में ले जाने के लिए प्रेरित करती हैं। ये क्रम है हमारे जीवन का क्रम, पहले वासना, फिर इंद्रियों का जगना, फिर इंद्रियों का बाहर जाना, और इंद्रियों के द्वारा विषयों का अनुभव करना, और अनुभव करने के बाद वो अनुभव वो संस्कारों के रूप में बदल जाते हैं। आदमी को लगता है कि चलो एक ही बार तो अनुभव कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो अनुभव संस्कारों में बदल जाते हैं, और जब संस्कार बन जाते हैं ना तो वो संस्कार स्मृतियों को पैदा करते हैं। आप बैठे हैं और वो चीज आपको याद आने लगती है, वो संस्कार स्मृति को पैदा कर लेते हैं, तो वो चीजें याद आने लगती हैं। और वो कौन सी चीजें याद आती हैं आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, बैठते ध्यान में और कौन सी चीजें याद आती हैं। जो आज हमारे शरीर के द्वारा करना कभी संभव नहीं है, आप नहीं कर सकते, वो चीजें भी याद आती और वो आदमी को पागल बना देती। एक किसी सज्जन पुरुष का फोन आया परसों मेरे पास, बहुत ईमानदारी की बात बोली उन्होंने। उन्होंने कहा कि मैं 75 वर्ष का जीवन भर सत्संग किया और उसके बाद भी जब ध्यान में बैठता हूं तो ये सारी चीजें क्यों आती हैं, और बहुत गहराई से आती हैं, बहुत गहराई से हमारा ध्यान विचलित कर देती हैं, भगवान से, आत्मा से, श्रवण मनन से, बहुत गहरे संस्कार ये गहरी संस्कार की भावना है। हमने चीज को दोहराया, हमने सैकड़ों बार, हजारों बार, लाखों बार, और वो चीज अवचेतन मन में और गहरी होती है, और वो चीज जितनी गहरी होती जाती है उतनी ही वो मजबूती से संस्कारों को जगा देती है, और वो संस्कार हमें स्मृति में ले जाते हैं, और वो स्मृति हमारे लिए बहुत बड़ा प्रतिबंध है। यादें हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रतिबंध भी हैं, यादें काम की भी हैं, इसलिए स्मृति बोला है। आपके शास्त्रों को स्मृति बोला है, सम्यक स्मृति, भगवान बुद्ध ने बोला सम्यक स्मृति। और वो स्मृति यदि बिगड़ जाए, हमारी स्मृति यदि बिगड़ जाए, तो वो स्मृति हमारे साधना में बहुत बड़ा प्रतिबंध है। स्मृति हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्रतिबंध, इसलिए बहुत सावधानी से सम्यक स्मृति को बनाए रखना बहुत जरूरी है। जो चीज हम दोहराते जाते हैं वो चीज और मजबूत होती जाती है, हम उसको क्रिया देते हैं, जितना हम उसको क्रिया देते जाते हैं उतनी वो चीज और गहरी होती जाती है। ये चीज, ये सूत्र हमें हमेशा याद रखना चाहिए। हम उसको जितना क्रिया देते जाते, आप किसी चीज को, आप किन्हीं संस्कारों को, आप किन्हीं स्मृतियों को कमजोर करना चाहते हैं, उसको नष्ट करना चाहते हैं, उसका एक ही उपाय है, उसको हम क्रिया न दें। हम उसको जितना क्रिया देते जाते वो उतनी और गहरी होती जाती। जैसे उदाहरण में, आपको रसगुल्ले बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, माला छोड़ के भी आप उसको खरीदने के लिए जा सकते हैं। आपको रसगुल्ले की याद आई, हो सकता है कि नहीं कि माला आपके हाथ से छूट जाए, सत्संग भी छूटे, हो सकता है। और आपको उन संस्कारों को, उस पागलपन को दूर करना है, एक ही उपाय है, उसको क्रिया न दे। वासना को क्रिया देना पड़ता है, वासना क्रिया की मांग करती है, और जितना हम उसको क्रिया देते जाते हैं उतनी और मजबूत होती जाती है, उसकी जड़ें और गहरी होती जाती है। क्रोध आया, काम की लहर पैदा हो गई, लोभ की लहर मन में पैदा हो गई, द्वेष, जलन, घृणा, ये वृत्तियां अंदर से उठी, और उठने के बाद वो केवल उठती नहीं है, वो क्रिया चाहती है, वो इंद्रियों में प्रकट होना चाहती है, इंद्रियों के विषय तक पहुंचना चाहती है। ये तो क्रिया देना है, उन इंद्रियों को विषयों तक पहुंचाने का जो आयोजन, वही तो क्रिया देना है, वही तो उसको आचरण देना है। और जितना उसको हम क्रिया देते जाए वो और गहरी होती जाती, इसलिए उसको तोड़ने का, समाप्त करने का यही उपाय, उसको क्रिया न दे। जैसे जितना शाखाएं आकाश में फैलती जाती उतना उसकी जड़ें और गहरी होती जाती वृक्ष की। जितना वो शाखाएं फैलाता है वृक्ष, उतना उसकी जड़ें और गहरी होती जाती, और गहरी होने के बाद उसको उखाड़ना बहुत मुश्किल है। इसीलिए साधकों को वासनाओं को क्रियाएं न देने का अभ्यास रखना चाहिए। जो साधक हैं वो हर इच्छा को पूरा करने का प्रयत्न न करें। इसको सरल शब्दों में यदि कहा जाए, इच्छाएं तो बहुत पैदा हो गई, बहुत सारी इच्छाएं पैदा हो गई, तो क्या उन सारी इच्छाओं को हम पूरा करते जाए क्या? जितना हम इच्छाओं को पूरा करने का प्रयत्न करते जाएंगे, और आश्चर्य की बात, कभी आप बहुत गहराई से आप सोचें, केवल आवश्यक इच्छा ही पैदा नहीं होती, अनावश्यक इच्छाएं भी बहुत सारी पैदा होती हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है, उन इच्छाओं का कोई अर्थ नहीं है। और ये इच्छाएं बड़े से बड़े आदमी को भी छोटा बना देती हैं। ये तो ब्रह्म को जीव बनाने की बात है, और कितना भी बड़ा से बड़ा आदमी हो, वो वासना जब पैदा हो जाती है उस बड़े आदमी को भी छोटा बना देती है, वो भिखारी बना देती है। वासनाएं आदमी को भिखारी बना देती हैं। इसलिए वासनाओं पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। मन ठीक है, पैदाएं होती हैं, संस्कार हैं, स्मृतियां जगती हैं, वो वासनाओं में ले जाना चाहती हैं, वो ठीक है, लेकिन वो हमारे ऊपर हावी ना हो, हम उसकी हर इच्छाएं पूरी ना करें, बस उस समय सावधान रहे, ठीक है। बहुत छोटी चीज हमारे मन में पैदा हो रही, बहुत छोटी, बड़ा आदमी बड़ा, बहुत छोटी सी चीज, लेकिन उस समय मन को बोले नहीं भैया ये चीजें हम नहीं कर सकते, अपने ही मन को समझाना है भैया नहीं ये नहीं कर सकते हम, उस समय बीत चुका है, अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन वो जगेंगे संस्कार। पूज्य स्वामी श्री गोविंदानंद जी महाराज एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया करते हैं, हमारे डॉक्टर स्वामी जी, एक बहुत मजेदार दृष्टांत अपने जीवन को समझने के लिए, प्रेरणा लेने के लिए, इससे उत्तम कोई दृष्टांत नहीं हो सकता है। ये हमारी इंद्रियां, हमारी वासनाएं हमको कैसे भिखारी बनाती हैं, कैसे जमीन पर उतार लेती हैं, कैसे वो परमात्मा से आत्मभाव से दूर कर देती हैं। पुराने जमाने की बात है, एक राजा था और वो मरने के पहले उन्होंने लिख दिया, अचानक मेरी कभी मृत्यु हो जाए तो मेरे गद्दी पर किसी को बैठाना हो तो हाथी के गले में, हाथी की सूंड में माला दे और उस हाथी को पूरे नगर में भ्रमण कराया जाए और वो हाथी जिसके गले में माला डाले उसको राजा बना दिया। वो राजा मर गए और उस हाथी के सूंड में माला दी गई, हाथी भ्रमण करने लगा। सुबह का समय था, संयोग से प्रारब्धवशात एक मंदिर के सामने से होकर हाथी गुजरने लगा और वहीं पर एक नवयुवक भिखारी भीख मांग रहा था और उसी के गले में उस हाथी ने माला डाली, उस भिखारी को बना दिया राजा, बन गया राजा, राज गद्दी पर बैठा वर्षों तक नारायण, बहुत अच्छी तरह से उन्हें राजकाज चलाया। एक दिन की बात है, एक मंदिर में दर्शन करने के लिए राजा जा रहे थे, बहुत सारे मंत्री परिषद के लोग, बड़े बड़े धन्ना सेठ उनके आसपास, और वहां मंदिर में दान देने के लिए बहुत सारा अन्न वस्त्र सोना बहुत सारी चीजें लेके आए थे। वहां पर एक कोई व्यक्ति भिखारियों को चने बांट रहा, बहुत सारे भिखारी ऐसे लाइन लगे हुए थे और बहुत सारे भिखारियों में तूतू में भी हो रही थी, बहुत सारे लोग मांग रहे थे सेठ जी मेरे को, सेठ जी मेरे को, सबके हाथ फैले हुए थे और सब याचना करते जाओ, वो बड़ी भीड़ लगी हुई थी, पता नहीं सेठ जी चले न जाए, खत्म न हो जाए, आदमी यही सोचता है, इसलिए जल्दी जल्दी मिल जाए सेठ जी मेरे को चना, मेरे को चना, मेरे को चना, लाए हजार सैकड़ों लोग वहां पर मांग रहे थे। अचानक वो राजा अपने मंत्रियों को छोड़ के दौड़ पड़े, लाइन में लगे और वो भी बोलने लगे सेठ जी, वो भूल गए, पुराने संस्कार जग गए उनके अंदर, वो भिखारी की संस्कार जग गए, वो भूल गए कि मैं राजा हूं और बांटने के लिए आया हूं, मैं यहां पर मैं बांटने के लिए आया, राजा हूं मैं, बांटने के लिए आया हूं, और वो भी लाइन में लग के मांगने लगे सेठ जी हमको भी चना है, सेठ जी हमको भी चुना। मंत्री भागे भागे गए, पकड़े और खींचने लगे, बोले आप राजा है, राजा आप क्या कर रहे हैं? अरे बोले रुक जाओ, थोड़ा चना लेने दो। मैं ये जीवात्मा की दशा तो यही है, ये दशा है कि दुर्दशा है, ये हमें, हमारी वासना हमें भिखारी बना देती है, ये हमारे हाथ में भीख का कटोरा थमा देती है, जैसे हमारे मन में कामना पैदा हो जाती है, हमारी इंद्रियां बाहर हो जाती हैं, हमारी इंद्रियां हमें भिखारी बना देती हैं। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है, कभी वासना पैदा हो जाए तो विचारों के द्वारा उस वासना का क्षमन जरूरी है, नहीं तो वासना पता नहीं कहां ले जाए हमें, किस कोने पर जाके खड़ा करते हैं। इसलिए सावधान करती है श्रुति, तमक क्रतुहु अक्रतुहु, वासना पर नियंत्रण, कामना पर नियंत्रण, अक्रतु का अर्थ यही अनासक्त, निरासक्त, निष्काम, अकाम जो साधक हैं वो धातु प्रसादात, उसकी इंद्रियां बहुत शांत रहती हैं, ध्यान दीजिए, जो अकाम है ना, धातु प्रसादात, उस समय उनकी इंद्रियां, इंद्रियों की प्रसन्नता रहती है, और जैसे कामना पैदा हो जाती है मन में, या धातु शब्द का अर्थ है इंद्रियां, धातु माने इंद्रियां, इंद्रियों की प्रसन्नता बहुत जरूरी है। उस तत्व को जानने के लिए इंद्रियों की प्रसन्नता की भी जरूरत है। अब ये चीज हम जान नहीं पाते। हम आत्म तत्व का चिंतन तो बहुत करते हैं, बहुत ऊंची चीजों में हम दृष्टि रखते हैं, लेकिन ये छोटा सा सूत्र जो है ना, धातु प्रसादात, अब आपकी इंद्रियां यदि विचलित हैं, अशांत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, आप उस तत्व को जानेंगे कैसे? अब यहां धातु शब्द का अर्थ सारी चीजें ले लीजिए आप, पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारी चीजें धातु प्रसादात, और ये यदि धातु प्रसन्न ना हो तो हम जानेंगे कैसे? इसलिए शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, ऐसा बोला है। शरीर, इंद्रियां, ये सारी चीजें, प्राण तत्व, प्राण तत्व भी, यदि प्राण ही ना हो तो, प्राण की गति ही टेढ़ी मेढ़ी हो तो, इसलिए ये सारी चीजें समझ लेनी चाहिए। प्राण तत्व की गति विकृत हो जाए तो भी आत्म साधना में प्रतिबंध उपस्थित होगा। आप बैठे हैं, लंबी लंबी सांस चलने लगे तो क्या करोगे आप? आपका ध्यान आत्मा में जाएगा कि अनात्मा में जाएगा? आप बैठे हैं, प्राण तत्व इतना सूक्ष्म हो गया है, आप ध्यान करना, उसमें ऐसा लगता है कि मानो प्राण है भी कि नहीं, शरीर में प्राण चल भी रहे कि नहीं, आपको मालूम ही नहीं पड़ता। इसलिए धातु शब्द का अर्थ है जो धारण करता है, जो शक्ति है, जो हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर भी, प्रसादात, इसके प्रसाद से, इसकी प्रसन्नता से। इसलिए कई बार मैं बोलता हूं कि परिस्थितियों को भी आदमी को संभाल के रखना चाहिए, साधक को, आसपास की परिस्थितियां भी न बिगड़े, इसका भी साधक को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आसपास की परिस्थितियां जब बिगड़ जाती हैं तब भी साधना में बहुत बड़ा प्रतिबंध आ जाता है। अपने आसपास के रिलेशन भी बहुत अच्छे होना चाहिए। यदि साधक है तो उसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। हम उपद्रव खड़े कर, हम अपने आसपास की चीजों को अव्यवस्थित बनाकर साधना नहीं कर सकते हैं। इसलिए गृहस्थाश्रम का साधक हो चाहे वो संन्यास आश्रम का, वो आसपास की चीजों को उलझने न दे, वो बहुत समझदारी से काम करे, कहीं अहंकार टकराए, कहीं कामना, कहीं क्रोध, कहीं जलन, कहीं घृणा, कहीं ईर्ष्या, हम आसपास बहुत सारे प्रतिबंध खड़े कर देते हैं, और वो बहुत सारे प्रतिबंध फिर साधना में बाधा बन जाते हैं। इसलिए साधक को हमेशा याद रखना चाहिए, कहीं द्वेष पैदा न हो, कहीं राग पैदा न हो, किसी का मन न दुखे, क्योंकि किसी का मन दुखेगा तो वो आपको दुखाएगा। वो हम क्यों एक प्रतिस्पर्धी खड़ा कर दें हम अपने सामने? इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण ये भी है कि हमारे विरोधी पैदा ना हो। बुद्धिमान व्यक्ति का ये भी कर्तव्य है, प्रथम, कि हमारे विरोधी पैदा ना हो। विरोधियों को खत्म नहीं करना है, लेकिन हमें ऐसा आचरण जीवन में नहीं करना है जिससे कि बहुत सारे लोग विरोधी पैदा हो जाए, और व्यर्थ के विरोधी पैदा कर लेते हैं हम लोग, और वो सारी चीजें फिर हमारे साधना में बाधा बन जाती है। इसलिए चाहे प्रारंभिक साधक हो, चाहे वहां तक पहुंचने की तैयारी का साधक, उसके लिए बहुत जरूरी है परिस्थितियां हमारे अनुकूल बनी रहे, और उसके लिए समझ की जरूरत है, विवेक की जरूरत है। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान न दे, यदि हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें तो हम बड़ी चीज से दूर होंगे, बड़ी चीज का ध्यान हटेगा। बहुत छोटी सी चीज आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं भूल जाती हैं, बहुत छोटी सी चीज। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि हम बहुत छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं, हम बहुत छोटी छोटी चीजों में। मधु बाबू, हम चम्मच में उलझ सकते हैं क्या? कटोरे में, थाली में? हमारी उलझने की चीजें बहुत छोटी होती हैं। कभी आप घर में देखे होंगे, चम्मच के लिए झगड़े, थाली के लिए झगड़े, कटोरे के लिए झगड़े, बहुत छोटी छोटी चीजों में हम उलझते हैं। हमें उलझने के लिए बहुत बड़ी चीजों की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीजें। चश्मे में, हाँ हाँ, बहुत छोटी चीज है, वो उलझ गए, नहीं मिला, टूटा फूटा, कुछ हुआ, अपने अनुकूल नहीं, गए काम से, अब आप परेशान होंगे, आपका ध्यान ही नहीं लगेगा। आश्चर्य की बात, इतनी छोटी सी चीज, आपकी पेंसिल मिस हो गई है, जरूरत थी कुछ टिक मारने के लिए, और वो पेंसिल मिस हो गई। अब आप ध्यान लगाओगे कि नहीं बैठ के? आप कितना भी कोशिश करो, अब वो इतनी छोटी सी पेंसिल भी आप पर भारी हो जाती है। इसलिए धातु प्रसादात, इंद्रियों की प्रसन्नता, आसपास की परिस्थितियां, बहुत सारी चीजें, उनको बहुत बुद्धिमत्ता पूर्ण ढंग से व्यवस्थित करना, और उसके बाद फिर महिमान मात्मनः पश्यति, फिर आप उस आत्मतत्व की महिमा को जान लेंगे, आत्मतत्व का बोध होगा, जो अनोरणीयान महत्वमय। एक बात, महात्मा जी एक आलंदी में हुए, बहुत सिद्ध पुरुष, उन्होंने विचार सागर का बहुत प्रचार किया है, हिंदी का मराठी में बना के। वो अपने साधकों को अक्सर एक बात बोलते थे, तुमको झाड़ू नहीं लगाना आता है तो तुमको ब्रह्मज्ञान कैसे होगा? अरे बोले, तुमको जो झाड़ू नहीं लगाना आता है तो तुमको आत्मज्ञान कैसे होगा? एक दिन किसी साधक ने पूछा, गुरुदेव ये आत्मज्ञान और झाड़ू लगाने का क्या अंतर संबंध है? वो बोलते थे, देखो जितना आदमी एकाग्र होगा, जितना वो सावधान होगा, वो उतना ही एकाग्र और सावधानी से झाड़ू लगाएगा, और जिसका मन विचलित है, जिसकी इंद्रियां अस्त व्यस्त है, उस आदमी को बोलो झाड़ू लगाओ, वो लगाएगा। वो झाड़ू क्या लगाएगा, वो तो और कचरा कर देगा, वो जहां का उसको कचरा ही नहीं दिखाई देगा, वो सफाई दिखाई नहीं देगी उसको। इसलिए एकाग्रता, वो कहते थे ये मतलब है कि आपके अंदर एकाग्रता है तो हर जगह पर दिखाई देनी चाहिए, आपकी पवित्रता हर जगह पर। आप आत्मा परमात्मा को जानना चाहते हैं और आपके आचरण में वो पवित्रता है कि नहीं? महाराज श्री ने कहा कि आप घर में हर व्यक्ति के साथ वो दया, वो करुणा, वो उदारता, वो अहोभाव, वो आपके अंदर वो दैवी संपदा आ रही कि नहीं? आप जानना चाहते हैं आत्मा परमात्मा को, और आपके अंदर जो अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग अव्यवस्थिति, या आपकी जो संपत्तियां है ना, देवी संपदा, ये सारी चीजें, श्याम दम, ये सारी चीजें हमारे अंदर आ रही कि नहीं? ये तो कई बार हम चाहते हैं तो आत्म तत्व को पाना, और आप लौकिक जीवन में, व्यवहार में, आचरण में जब देखते हैं तो एक सामान्य व्यक्ति भी हमको आरसा दिखा देता है, एक सामान्य व्यक्ति भी आरसा दिखा देते हैं, आपके बच्चे आपको आरसा दिखा दे देते हैं, बोल देते हैं कि आप तो सत्संग में जाते हो, आपसे तो हम अच्छे हैं। क्यों मधु बाबू जी? एक छोटा बच्चा भी आपको आरसा दिखा देता है, आपसे अच्छे तो हम हैं, हम सत्संग में नहीं जाते, आप सुबह से शाम उसी में लगे रहते, फिर भी तुमसे हम। इसलिए वीत शोको धातु प्रसादान महिमान आत्मन पश्यति वीत शोको, अब उसके जीवन में शोक मोह नहीं रहते हैं। तत्र कहा मोह कहा शोक एकत्व मनु पश्यत, बड़ा सुंदर प्रकरण है। एक बड़ी दुखद बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, हमारे सन्यासी समाज के महान मनीषी, भारतवर्ष के, पूरे दुनिया के संस्कृत साहित्य, वेदांत, न्याय, योग आदि के परम दार्शनिक सार्वभौम जिनको कहा जाता था, और सन्यासियों में इतना विद्वान दूसरा कोई महात्मा नहीं था, हमारे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री काशिकानंद जी महाराज, गिरिजी महाराज का ब्रह्मावसान कल सुबह हो गया 6 बजे के आसपास। बड़े दुख की बात है, कल किसी भगत का फोन आया उनके शरीर छूटने के 3 दिन पहले या 4 दिन पहले वो मिलने के लिए गए थे। तो उन्होंने बहुत सुखद बात सुनाई, बोले जैसे ही मैं गया तो महाराज जी एक भजन गा रहे थे, बहुत प्रसन्नता पर गुनगुनाते थे, कभी कभी भजन गुनगुनाते थे। और वो भजन क्या था वो पूरा मेरे को मालूम नहीं है, उन्होंने जितना बोला उतना मैं आपको सुना देता हूं। गंगा का तट हो, किसी को भजन समझ प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गंगा का तट हो, यमुना का पावन तट हो, सावरा, वो भजन गा रहे थे। काशिकानंद जी महाराज ये भजन गा रहे थे कि जब ये शरीर छूटे तो मैं गंगा के किनारे रहूं, मैं यमुना के किनारे रहूं, मेरे आंखों के सामने प्रभु हो, ये भाव। और मेरी बहुत प्रसन्नता से, बहुत प्रसन्नता से। तो ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, कल मैं दिन भर हमारे आदरणीय स्वामी जी धर्मानंद जी महाराज जी से चर्चा कर रहे थे। हम साल में 1-2 बार दर्शन करने के लिए जाते थे, और नहीं भी जाते थे तो ऐसा लगता था कि कोई पिता है हमारे ऊपर, एक बड़ा आदमी हमारे सिर पर है। भले ही वहां न जाते थे लेकिन उनकी उपस्थिति ही लाखों साधुओं को प्रेरणा देती थी, जैसे कि एक सुरक्षा कवच। जब भी कोई शास्त्रार्थ की बात आती थी हमारे हिन्दू धर्म के ऊपर किसी विषय पर, तो सबसे पहले उन्हीं का नाम आता था। हिन्दू धर्म की रक्षा करने के लिए शास्त्रार्थ का पंडित कौन है, तो बोले काशिकानंद जी महाराज। तो एक बहुत अदृश्य दृश्य प्रभाव उस महापुरुष का, और दुर्लभ, अब ऐसे महापुरुष मिलना बहुत कठिन है, और हम उस महापुरुष के लिए हम सब खड़े हो जाए, खड़े होकर 2 मिनट के लिए हम श्रद्धांजलि करें। 2 मिनट हम लोग मौन और उस दिव्य आत्मा के प्रति अहोभाव श्रद्धा से।
ॐ ह्रीं नमः शिवाय, 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 ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।